नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा, इस मुद्दे पर कोई दोहरा मापदंड या समझौता नहीं होगा। कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक वार्ता की। भारत और मलेशिया ने सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और चिकित्सा तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता कृषि और किसानों के हितों की पूर्ण रक्षा करता है। प्रमुख कृषि उत्पाद समझौते से बाहर होने का आश्वासन दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की प्रगति पर बैठकें की। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री रमेश चंद सेन का दिनाजपुर जेल में निधन, वहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा हुई। और T20 क्रिकेट विश्व कप में अफगानिस्तान ने चेन्नई में खेले जा रहे मुकाबले में न्यूजीलैंड को 183 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कुआलालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस वार्ता में रक्षा और सुरक्षा संबंधों को बढ़ाने तथा आर्थिक और नवाचार साझेदारी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया गया। वार्ता के दौरान दोनों पक्षों ने कई समझौतों और दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। इनमें आपदा प्रबंधन, ऑडियो विजुअल सहनिर्माण, भ्रष्टाचार निवारण और रोकथाम, सेमीकंडक्टर विकास, स्वास्थ्य और औषधि, छात्रवृत्ति के संस्थान तथा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और पेनिट ऑफ मलेशिया के बीच के समझौता ज्ञापन शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और मलेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा, रक्षा तथा आतंकवाद से मुकाबले से संबंधी सहयोग में विस्तार होगा।
सिक्योरिटी के क्षेत्र में हम काउंटर टेररिज्म, इंटेलिजेंस शेयरिंग और मैरिटाइम सिक्योरिटी में सहयोग मजबूत करेंगे। हम रक्षा सहयोग को भी और व्यापक बनाएंगे। AI और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के साथ साथ हम सेमीकंडक्टर, हेल्थ और फूड सिक्योरिटी में साझेदारी को आगे बढ़ाएंगे।
श्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। आतंकवाद पर कोई दोहरा मानदंड नहीं हो सकता और आतंकवाद से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
भारत और मलेशिया की बढ़ती मित्रता दोनों देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारा साझा मत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म बहुत जरूरी है। हम शांति के सभी प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे और आतंकवाद पर हमारा संदेश स्पष्ट है, नो डबल स्टैंडर्ड्स, नो कॉम्प्रोमाइज।
प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच ऊर्जा, अवसंरचना, विनिर्माण और डिजिटल अर्थव्यवस्था में द्विपक्षीय सहयोग भी सशक्त हो रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में हमारे संबंधों ने एक नई रफ्तार पकड़ी है। हमारे बीच एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग बहुत मजबूत हुआ है। डिजिटल इकोनॉमी, बायोटेक और IT में आपसी इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। टूरिज्म और पीपल टू पीपल टाइज भी गहरे हुए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के एक सम्मेलन में भागीदारी की। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आसियान के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराया और आसियान की अध्यक्षता पर मलेशिया को बधाई दी। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष जल्द से जल्द आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते की समीक्षा संपन्न करने पर सहमत हुए। श्री मोदी ने कहा कि भारत और मलेशिया क्षेत्र में विकास, शांति और स्थिरता के लिए एक साथ काम कर रहे हैं।
मलेशिया दौरे का सार प्रस्तुत करते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व पी कुमारन ने कहा कि सेमीकंडक्टर सहयोग एक प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है। उन्होंने बताया कि सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम में सहभागिता बढ़ाने के लिए मलेशिया इंडिया डिजिटल काउंसिल का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि यह काउंसिल डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ई गवर्नेंस, साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमता, फिनटेक और पेमेंट लिंकेज जैसे क्षेत्रों पर भी सहयोग को आगे बढ़ाएगी। श्री कुमारन ने कहा कि भारत की डिजाइन क्षमता और मलेशिया का विनिर्माण, असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग में लंबा अनुभव एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि दोनों देशों के बीच आतंकवाद रोधी सहयोग में ट्रांसनेशनल अपराध, मानव तस्करी और हिंसक उग्रवाद जैसे मुद्दे शामिल हैं। दुर्गेश भदौरिया, आकाशवाणी समाचार, कुआलालंपुर।
मलेशिया की दो दिन की यात्रा संपन्न करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर कांग्रेस की आलोचना के जवाब में कहा कि यह समझौता कृषि और किसानों के हितों की पूरी तरह रक्षा करता है और प्रमुख कृषि उत्पादों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। एक रिपोर्ट।
भारत अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पत्रकारों से बात की। श्री चौहान ने कहा कि इस डील में भारतीय कृषि की शुद्धता बरकरार रखी गई है।
सभी ऐसी वस्तुओं को समझौते के बाहर रखा गया है। आप देखेंगे सोयाबीन, मक्का, चावल, गेहूं, चीनी, मोटे अनाज, पोल्ट्री, डेयरी, केले, स्ट्रॉबेरी, चेरी, खट्टे फल, हरी मटर, काबुली चना, मूंग, तिलहन, इथेनॉल, तंबाकू जैसे उत्पादों पर कोई टैरिफ में छूट नहीं दी गई है।
श्री चौहान ने कहा, हकीकत ये है कि जो भी चीजें हमारे किसानों की ताकत हैं, उन सबको इस समझौते से बाहर रखा गया है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता निष्पक्ष, न्याय संगत और संतुलित है तथा किसानों के हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करता है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि इस समझौते का उद्देश्य निर्यात को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन और देश को वर्ष 2047 के विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जाना है।
50% की जो रेसिप्रोकल टैरिफ भारत के निर्यात के ऊपर अमेरिका में लगती थी वो अब मात्र 18% लगेगी और 18% जितने देश है जिनके साथ हमारा पर्दा रहती है उन सभी देशों से कम है और आगे आने वाले दिनों में हमें और हमारे निर्यातकों को बहुत लाभ देंगे।
गृहमंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था और विकास परियोजनाओं की समीक्षा के लिए कई उच्च स्तरीय बैठकें की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन बैठकों में केंद्र और राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी तथा सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया।
केंद्र सरकार द्वारा इस वर्ष 31 मार्च तक देश को नक्सलवाद की समस्या से मुक्त बनाने के संकल्प के मद्देनजर आज रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही बैठकें काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। इन बैठकों में संभवतः माओवादियों के बचे खुचे नेटवर्क पर अंतिम प्रहार की रणनीति तय की जाएगी। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित रहे इलाकों में अधोसंरचना के विकास के साथ ही विभिन्न विकास परियोजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी तरीके से लागू करने का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
गृहमंत्री शाम को छत्तीसगढ़ एट 25 दृष्टिकोण में बदलाव शीर्षक से राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि होंगे। श्री शाह कल जगदलपुर में बस्तर पांडु महोत्सव के समापन समारोह में भी उपस्थित होंगे। श्री शाह छत्तीसगढ़ की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम रायपुर पहुंचे। असम सरकार ने कांग्रेस सांसद और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गौरव गोगोई के कथित पाकिस्तानी संबंधों का मामला गृह मंत्रालय को सौंपने का निर्णय लिया है। गुवाहाटी में आज मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा ने कहा कि जांच पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से की जा रही है और इसमें राजनीतिक पहलू शामिल नहीं है। श्री शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने एक पाकिस्तानी नागरिक के कथित भारत विरोधी साजिश की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन किया है। मुंबई पुलिस ने फर्जी पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके शहर में गैर कानूनी तरीके से रह रहे 4 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने आज बताया कि मलाडपुर के पठानवाड़ी क्षेत्र में चलाए गए कई समन्वित अभियानों के बाद ये गिरफ्तारी की गई है। प्रारंभिक जांच में उनकी बांग्लादेश नागरिकता से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि उन्हें बांग्लादेश प्रत्यर्पित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2025 कल से लागू हो जाएगा। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना है। इस कानून के अंतर्गत अब नकल, प्रश्न पत्र लीक, जालसाजी और परीक्षा संबंधी संगठित अपराधों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि वर्तमान केंद्रीय बजट निरंतरता, स्थिरता और सतत विकास को दर्शाता है। शिमला में केंद्रीय बजट पर संवाद कार्यक्रम में उन्होंने आज ये बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्ष से विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास जारी हैं। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेमासानी चंद्रशेखर ने कहा है कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट का उद्देश्य समावेशी विकास, मजबूत बुनियादी ढांचा और भविष्य के अनुकूल सुधार करना है। विशाखापट्टनम में आज भारतीय जनता पार्टी की आंध्र प्रदेश इकाई के संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि केंद्र ने पिछले और वर्तमान बजट के बीच 365 सुधार लागू किए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। बांग्लादेश के पूर्व जल संसाधन मंत्री और अवामी लीग के वरिष्ठ नेता रमेश चंद्र सेन की दिनाजपुर जिला जेल में हिरासत के दौरान मौत हो गई। वे 85 साल के थे। इससे वहां बुजुर्ग कैदियों के इलाज और चिकित्सा देखभाल पर फिर से सवाल उठने लगे हैं। दिनाजपुर जिला जेल के सुपरिटेंडेंट फरहाद सरकार ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव परिवार को सौंप दिया जाएगा। रमेश चंद्र सेन को 5 अगस्त की राजनीतिक उथल पुथल के बाद दर्ज मामलों के सिलसिले में 16 अगस्त 2024 को उनके घर से गिरफ्तार किया गया था। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू बुधवार को वाशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से भेंट करेंगे। ये मुलाकात अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता पर केंद्रित होगी। श्री नेतन्याहू ने कहा है कि बातचीत में ईरान के साथ किसी भी समझौते में तेहरान के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर रोक और क्षेत्र में सहयोगी आतंकवादी समूहों को दिए जा रहे समर्थन को समाप्त करना शामिल होना चाहिए। श्री ट्रंप ने वार्ता में प्रगति का संकेत देते हुए कहा है कि अगले सप्ताह की शुरुआत में आगे की चर्चा होने की संभावना है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी ओमान के सलालाह तट पर पहुंच गया है। यह यात्रा भारत और ओमान के बीच ऐतिहासिक समुद्री संबंधों को उजागर करती है और दोनों नौसेनाओं के बीच बने सेतु की मित्रता को मजबूत करती है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा पोत की महत्वाकांक्षी 10 महीने की समुद्र यात्रा लोकायन 26 में एक मील का पत्थर है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्र विरासत और वसुधैव कुटुंबकम के आदर्शों को विश्व स्तर पर प्रदर्शित करना है। चेन्नई में T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान कृपया से फिर से सुन ले चेन्नई में T20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने मौसम विभाग ने उत्तराखंड में कल तक कुछ स्थानों पर सुबह रात के समय घना कोहरा छाए रहने का पूर्वानुमान लगाया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कल से बुधवार तक छिटपुट बारिश और हिमपात होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन में देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। तिरुपति में श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव आज ध्वजारोहण समारोह के साथ शुरू हुआ। वैदिक मंत्रों के साथ नंदी की छवि वाला पवित्र ध्वज आज शुभ मकर लग्न में फहराया गया। मंदिर की परंपरा के अनुसार ध्वज स्तंभ का विशेष अभिषेक वर्ष में केवल एक बार ब्रह्मोत्सव के दौरान ध्वजारोहण के दिन किया जाता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने आयकर अधिनियम 2025 से संबंधित प्रस्तावित आयकर नियमों और प्रपत्रों पर हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। आयकर अधिनियम 2025 को पिछले वर्ष अगस्त में राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी थी। ये इस वर्ष 1 अप्रैल से लागू होगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आज मुंबई के ताजमहल पैलेस में सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हमनी से भेंट की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर भारत के दृढ़ रुख को दोहराते हुए कहा इस मुद्दे पर कोई दोहरा मापदंड या समझौता नहीं होगा। क्वालालंपुर में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के साथ व्यापक वार्ता की। भारत और मलेशिया ने सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, स्वास्थ्य और चिकित्सा तथा शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौता कृषि और किसानों के हितों की पूर्ण रक्षा करता है। प्रमुख कृषि उत्पाद समझौते से बाहर होने का आश्वासन दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा स्थिति और विकास कार्यों की प्रगति पर बैठकें की। बांग्लादेश के पूर्व मंत्री रमेश चंद्र सेन का दिनाजपुर जेल में निधन, वहां की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा हुई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।